इसका जो प्रमुख पहलू ये है कि ये लॉजिस्टिक एंड सप्लाई का एक अग्रीमेंट है। अमेरिका ने कई देशों के साथ इसका हस्ताक्षर उन्होंने किया है और अभी ये एक प्रकार से दोनों देश एक प्रकार के सहमति पे आए हैं कि ये एक इंडिया स्पेसिफिक अग्रीमेंट होगा जिसका नाम इन्होंने LEMA रखा है, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई का मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट। तो इसका जो मोटी बात यह है कि जहाँ तक भारत और अमेरिका के लिए जो लॉजिस्टिक्स चाहिए, खास जहाज़ों के लिए, चाहे वो नेवल शिप्स हो या एयरक्राफ्ट, फ्यूल रिप्लेनिशमेंट और किसी इमरजेंसी में कोई ऐसा रिपेयर या किसी और प्रकार की अगर ज़रूरत पड़ता है तो वो एक दूसरे का समर्थन ले सकते हैं, क्योंकि हमारा जो इस वक्त खास समुद्री तट में, चाहे वो हिंद महासागर में हो या कहीं और, हमारे पास उस प्रकार की रिप्लेनिशमेंट के ऑप्शंस या फैसिलिटी नहीं है, तो ये भारत के लिए एक प्रकार का सकारात्मक प्रोविजन होगा।
अतुल जी, आपने सुना उदय भास्कर साहब कह रहे हैं कि ये भारत के लिए सकारात्मक होगा, आपको क्या लगता है, भारत के लिए ये सकारात्मक होगा या इससे लेकर कुछ आपत्ति है आपकी?
यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका जो है एक नाटो देशों का सबसे बड़ा गिरोहबंद सरदार है। अगर सैन्य संतुलन को बनाने की बात हो कि चीन के बढ़ते हुए सैन्य प्रारूप को देखकर हमें संतुलन बनाने के लिए, ठीक है, तो हम उसे अपने हिसाब से बनाएंगे, लेकिन 80 देशों के साथ मिलकर गिरोहबंदी करेंगे, एक तरीके से आप भारत को घसीट करके नाटो की तरफ घसीट कर ले जाना चाहते हैं अमेरिका, ये क्या खेल है? अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी, नाटो की विस्तारवादी सैन्य रणनीति में भारत को फंसने का हस्ताक्षर है।
उदय जी, जैसा कि अतुल अंजान कह रहे हैं कि नेटो की साम्राज्यवादी विस्तारवादी एक तरह की तिगड़म में भारत को फांसने की ये कोशिश है, आपको, आप इससे सहमत हैं या आपके पास इससे काटने के लिए कुछ और तर्क हैं?
नहीं सर, ये काटने वाली बात नहीं है, पर जिस प्रकार से अभी अतुल जी ने कहा है, हम उससे सहमत इसलिए नहीं है क्योंकि जिस बात की अभी हम चर्चा कर रहे हैं, ये भारत अमेरिका के बीच में एक इन प्रिंसिपल अग्रीमेंट है जो कि लॉजिस्टिक सप्लाईज और इस प्रकार के मुद्दों के ऊपर है। जो भी अतुल जी ने कहा है अमेरिका के बारे में, नाटो के बारे में, अमेरिका के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, ये सब मेरे ख्याल से और मुद्दे हैं जिनके ऊपर चर्चा ज़रूर होना चाहिए। भारत के लिए चुनौती ये है कि हम शक्तिशाली देश और उनके पास जो जानकारी है उनके साथ भागीदारी करते हुए हम अपने जो मिलिट्री की जो क्षमता है, जैसे मैंने कहा संपूर्ण क्षमता, उसको जितना हो सके हम उसको और बढ़ाना चाहते हैं। हम केवल लॉजिस्टिक्स और फ्यूल की बात कर रहे हैं और ये शुरुआत होगा, तो इसको नेटो के साथ मिलाना मैं कहूँगा सही नहीं होगा। सर
उदय भास्कर जी, मेरे दिमाग में एक प्रश्न आ रहा है, ये 80 देशों के साथ अमेरिका का लॉजिस्टिक सपोर्ट है या लॉजिस्टिक अंडरस्टैंडिंग है या सहमति है, क्या ये 80 देश जिनसे उनका है वो भारत पर कभी हमला नहीं करेंगे?
नहीं सर, ये
अमेरिका के साथ हमारी ये जो
लॉजिस्टिक, जो आप बार बार 80 देशों की बात कर रहे हैं, इसमें इंटरकनेक्टेडनेस नहीं है, यानी कि चाहे अमेरिका जितने भी देश हैं, चाहे यूरोप में हो, एशिया के महाद्वीप में या अफ्रीका में, मान लीजिए अगर कोई ऐसा सिचुएशन पैदा होता है जहां अमेरिका किसी और देश के साथ कोई ऑपरेशनल या हमले की तरफ अगर जड़ते हैं, तो भारत के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। तो ऐसे स्थिति में भारत के ऊपर कोई ऐसे पाबंदी या कोई ऐसा ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो अमेरिका को समर्थन करें।
मैंने वही तो सर,
ये ऑपरेशनल
बड़े गंभीर में, आप बड़े गंभीर रक्षा विशेषज्ञों के विशेषताओं के और के विशेषज्ञ हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। एक इतना बड़ा युद्ध हमारे दरवाजे पर अमेरिका ने इराक में थोप दिया, उसकी गर्मी से हमारा पूरा का पूरा माहौल इतने बम चला दिए जितने दूसरे विश्व युद्ध में चला, हम अपनी और मुश्ताब एक एक शब्द कह करके अपनी गलती से बच जाते हैं कि हमारे CIA ने गलत सूचना दी थी कि साहब सद्दाम के पास केमिकल वेपन्स और न्यूक्लियर आर्म्स हैं और न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो बच के निकल गए। मैं ये पूछ रहा हूँ ना कि आज की स्थिति में जब उनके पास, और अमेरिका ने तो क्या नहीं किया, सातवां छठा जंगी जहाजी बेड़ा जब बांग्लादेश के निर्माण के समय कब हमारे साथ खड़े हुए वो, और फिर आज हम इनसे समझौता कर रहे हैं, और मनमोहन सिंह के जमाने में जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट हो रहा था उस न्यूक्लियर एग्रीमेंट का क्या मतलब हुआ? उसमें तो वो नॉलेज इनिशिएटिव का भी था कि भारत जैसे देश में एग्रीकल्चर को क्या जरूरत है, इसके वैज्ञानिक पढ़ने जाएंगे अमेरिका में और वो उसके लिए हमने 1,000 करोड़ रुपए लगा दिए, बिना मतलब कि ये देश के अंदर उनका बढ़ता हुआ जाल कहीं हमको मकड़ जाल में तो नहीं फंसाएगा?
हमारे पास उस प्रकार का ऑप्शन नहीं है कि हम ऐसा बाइनरी चॉइस कि हम बड़े शक्तिशाली देशों के साथ संपर्क या सॉरी कांटेक्ट या संबंध नहीं रखेंगे, क्योंकि उन्होंने कोई उल्लंघन किया है, चाहे अमेरिका के संदर्भ में आप इराक की बात कर सकते हैं, चीन के बारे में हम कुछ और कह सकते हैं। आजकल के हालात में ग्लोबलाइजेशन जिस प्रकार से लहर बढ़ रहा है, मेरा लिमिटेड पॉइंट ये है कि भारत को हर एक देश के साथ अपने अपने संबंधों को जिन पटरियों के ऊपर हमारा राष्ट्रीय हित जो है वो प्रभावित होता है, हमें उन्हें सही प्रकार से आगे बढ़ाना चाहिए।